आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 30 नंबर अध्याय के 20वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। कृपया श्लोक दोहराने का प्रयास कीजिएगा। नव्यवधृत्ये यज्ञो ब्रह्मैतद् ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। नव्यवत्रिदये यज्ञो ब्रह्मैतद् ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। नव्यवद्रिद्ये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। नव्यवद्रिद्ये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। नव्यवद्रिदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। नव्यवद्रिदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। नव्यवद्रिदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः नामुयन्ति न शोचन्ति नारिष्यन्ति यतो गताः। शब्दात् नव्यवत् सदैव नवीन, हृदये हृदय में, यत् क्योंकि, यः परमात्मा परम ज्ञाता, ब्रह्मा ब्रह्म, एतत् यः ब्रह्मवादिभिः परम सत्य के ज्ञाताओं द्वारा ना कभी नहीं मुह्यंती मोहग्रस्त होते हैं ना कभी नहीं, शोचन्ति शोक करते हैं ना कभी नहीं, ऋष्यन्ति हर्षित होते हैं, यतः जब, गताः प्राप्त किए हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन स्वयं को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाते रहते हैं। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ना ही वह शोक करता है, ना वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तात्पर्य, भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रेरित होता रहता है। भक्त ना तो कभी उदासी का अनुभव करता है और ना ही स्वयं को निष्क्रिय अवस्था में समझता है। भौतिक जगत में यदि कोई किसी के नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब जाता है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र को दिन रात बिना थके जपा जा सकता है। जबकि संख्या बढ़ाने पर नित नया लगता है। श्रील रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीभ मिल जाएं तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकते हैं। अत्यंत सिद्ध भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणाहीन नहीं लगती। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं और स्मरण तथा विस्मरण में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भगवत भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्मणाम में लगे रहते हैं वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में ज्ञ कहा गया है, अर्थात वह जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानता है। परमात्मा केवल एक निष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देता है कि वे भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वे स्वयं अपने आप को अधिकाधिक नवीन रूप में प्रकट करते हैं। उससे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उनकी भक्ति में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के विषय में प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, जैसा कि भागवतम में प्रथम श्लोकों में बताया गया है कि तथा भागवतम निर्मत्सराणाम निर्मत्सराणाम सताम। जो भागवत धर्म है ये उनके लिए जो निर्मत्सर है, अर्थात जो सब प्रकार से ईर्ष्या की भावना से मुक्त हैं। लेकिन हम अभी साधन अवस्था में हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूर्ण रूप से वैष्णव की कृपा पर आश्रित होते हैं ताकि हम भागवत की सेवा कर सकें और कृपा प्राप्त कर सकें, शुद्ध हो सकें। तो भागवत पर कुछ प्रवचन करने की मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा के रूप में ये करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिस प्रकार कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि वो क्या समझा, तो इसी कारण से ये हमें मौका दिया जा रहा है बोलने का भागवतम के ऊपर। और आज बहुत डर लग रहा है क्योंकि जो निरंजन प्रभु जी, जिनको प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष आदेश दिए इन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो प्रभु जी यहाँ पे विराजमान हैं, तो इसीलिए गलती जहाँ भी होगी उसके लिए पहले से ही क्षमा की प्रार्थना कर रहा हूँ और गलती सुधारने के लिए भी तत्पर हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भक्त भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं वो हमेशा नए नए प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ बताया गया नव्यवत हृदय, तो ये भक्ति का स्वभाव बताया गया है। भगवान की भक्ति का स्वभाव है नित्य नवनव रसायमान, मतलब जितना ही हम भगवान की सेवा करते हैं उतना ही हम हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक। भगवान सर्वाकर्षक है। और भक्ति के बारे में क्या बताया गया, भक्ति क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति जो है वो दिव्य अमृत के रस का सागर है। तो ये सागर इस संसार के सागर जैसे नहीं है, इस संसार के सागर का एक किनारा है, लेकिन भक्ति का जो सागर है, भक्ति के रस का जो सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु, इसका कोई किनारा नहीं है। ये अनंत है, असीमित है और बढ़ता ही जाता है। जैसे बताया जाता है कि भगवान का गुणगान करने की क्षमता हमारे में हम में नहीं है। जैसा बताया कि अनंत शेष अपने सहस्त्रों मुखों से हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन वो गुणगान करते करते कभी भी ना तो वो थकते हैं और ना ही वो गुणगान कभी समाप्त होता है। तो भगवान का गुणगान समाप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि भगवान अनंत है। जितना ही भगवान का गुणगान करते हैं उतना ही भगवान के गुण, और जितने समय में वो भगवान के गुणों की एक सीमा का कीर्तन करते हैं उतने समय में भगवान के गुण और बढ़ते जाते हैं। भगवान के दिव्य गुण ऐसे हैं जो बढ़ते ही जाते हैं हमेशा, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो भक्त भगवान की प्रेम में सेवा में लगते हैं वो इस प्रकार का दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसे हमारे आचार्य चिद विलास बोलते हैं, चिद विलास अर्थात ये भगवान और भक्तों के बीच का आपसी प्रीति विनिमय है, जिसे केवल भक्तों द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा, योग द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, केवल भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि ये भक्ति योग क्या है, भक्ति रहस्य है, एक रहस्य है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो रहस्य है ये हमारी सेवा के अनुपात में ही हमें प्रकाशित होता है। जितना हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे, जितना ही हम उत्साह भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उतना ही भगवान अपने दिव्य ज्ञान को, अपनी भक्ति के स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो ये भक्ति का विज्ञान इस प्रकार का है। तो भगवान और भक्तों के बीच में हमेशा प्रीति विनिमय चलता रहता है। तो इसके लिए एक कथा है जो यहाँ पे हुई थी वृंदावन में ही, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यहाँ वृंदावन में रह रहे थे, भजन कर रहे थे। तो वो एकदम पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक भगवान का भजन करते थे। एक दिन रूप गोस्वामी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि सनातन गोस्वामी इतनी दृढ़तापूर्वक भजन कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, तो और वो बहुत सादा सीधा खाते हैं और अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, केवल भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि कभी ऐसा होना चाहिए कि मैं उन्हें आमंत्रित करूँ और कुछ अच्छा प्रसाद बनाकर खिलाऊँ। तो ये इच्छा रूप गोस्वामी के मन में हुई। तो उस दिन एक छोटी सी बालिका, 12-13 साल की एक छोटी लड़की, वो रूप गोस्वामी के पास जाती हैं और उन्हें बोलती हैं कि हे बाबा जी, आप तो यहाँ पर भजन कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ गांव में कुछ उत्सव हो रहा है, इसीलिए हम आपके पास कुछ सामग्री लेके आए हैं, कुछ दान लेके आए हैं, कुछ चावल, कुछ घी, शक्कर, ये सब सामान लाए हैं। तो रूप गोस्वामी उस कन्या को, उस बालिका को देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो बहुत दिव्य दिव्य स्वरूप था और वो हैरान हो जाते हैं कि इतना दिव्य सुंदर स्वरूप कि कैसे हो सकता है संसार में। तो बहुत आकर्षित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमको किसने बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो बोले कि गांव के कुछ लोग हैं, वो बताए कि एक बाबा जी हैं रूप गोस्वामी, वो यहाँ पर भजन करते हैं और वो तो भजन में इतना मग्न रहते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अपने शरीर की भी कोई चिंता नहीं है, तो इसीलिए हम स्वयं आपके पास ये दान सामग्री लेकर आए हैं, आप कृपया इसे ग्रहण कीजिए। तो रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, अरे मेरे मन में सनातन गोस्वामी की कुछ सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई और किस प्रकार ये व्यवस्था हो गई अपने आप से, ये सब सामान आ गया। तो वो बहुत अच्छा भोजन पकाते हैं, अच्छे व्यंजन बनाते हैं, खीर बनाते हैं और सनातन गोस्वामी को आमंत्रित करते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आते हैं और वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो जैसे ही सनातन गोस्वामी उस प्रसाद को चखते हैं तो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, अरे ये स्वाद कहाँ से आ रहा है। तो वो रूप गोस्वामी से पूछते हैं, अरे इतना मधुर रस इस प्रसाद में कैसे आ रहा है, कहाँ से लाए हो तुम ये सब सामग्री। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं कुछ साधु सेवा करूं, आपकी कुछ सेवा करूं, आपको कुछ अच्छा प्रसाद अर्पित करूं। तो एक छोटी सी कन्या 12-13 साल की, वो मेरे पास आई और ये सब सामग्री वो मुझे देकर चली गई। तो सनातन गोस्वामी जैसे सुनते हैं तो वो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और वो रूप गोस्वामी को एक डांटने जैसे लगते हैं। वो बोलते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया। तो रूप गोस्वामी समझते नहीं है मैंने क्या गलती किया है, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता था। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हम यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप कर रहे हैं इसका क्या भाव है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राम, कृपया आप हमें अपनी सेवा में लगाइए ताकि मैं माया की सेवा ना कर सकूं। तो हम हमेशा भगवान से सेवा की भिक्षा मांग रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, भगवान कृपया हमें अपनी सेवा का अवसर दे, हमें अपनी सेवा का सौभाग्य दे। और आपने भगवान कृष्ण से सेवा लेने की बजाय स्वयं राधा रानी से सेवा ले ली। तो रूप गोस्वामी एकदम चकित हो जाते हैं, अरे ये क्या, ये मैंने क्या किया, मैंने स्वयं राधा रानी से सेवा ले ली। तो ये जानकर दोनों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रोने लग जाते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो भगवान से कुछ सेवा लेना नहीं चाहते। तो हमें जो हमारे आचार्य ये भक्ति का भाव सिखा रहे हैं, हम भगवान की सेवा करने आए हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की तुई। कि हमें भगवान से कुछ अपने सुख के लिए नहीं चाहिए, हम भगवान से कुछ अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, हमें क्या चाहिए, केवल हम भगवान की हमेशा जन्म जन्मांतर तक सेवा करते रहे। ये भाव हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, हमारे आचार्य अपनी प्रार्थनाओं में ये भाव हमें सिखा रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत दयावान रहते हैं। तो जो भक्त भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, भगवान भी भक्तों की सेवा करने का मौका ढूंढते हैं। भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित रहते हैं और कुछ ना कुछ नया नया कुछ तरीका ढूंढते हैं भगवान की सेवा करने का, और भगवान अपने भक्तों की सेवा करने का मौका ढूंढते हैं। ये हम इन कहानियों से हम समझ सकते हैं। वास्तव में ये सब सत्य जो घटनाएं हैं और हम इसे सुने हैं पहले, लेकिन बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनने से हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि ये भक्ति एक विज्ञान है। अगर हम अपने जीवन में इसे आचरण में लाएंगे तो हम भगवान से इस प्रकार का प्रीति विनिमय कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं हम। ये भक्ति है। जब भक्त इस प्रकार के आदान प्रदान अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो उनका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है और भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता है। तो वास्तव में ये जो भक्ति का रस है, इस रस का हमें अनुभव करना पड़ेगा, तभी हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। अन्यथा हमारा मन हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, हमेशा हमारा मन जो है वो विषय आकर्षणों की तरफ खिंचता जाता है। लेकिन जब भक्ति का हम कुछ रस अनुभव करेंगे तो हमारा मन जो है धीरे धीरे स्थिर होगा। जैसे भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार एक कछुआ है, कछुआ क्या करता है, वो अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करते हैं वो इस भौतिक संसार के विषयों के से अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वो संकुचित कर लेते हैं, हटा लेते हैं। लेकिन ये हटाना जबरदस्ती नहीं हो सकता, जबरदस्ती हम ज़्यादा समय तक अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में नहीं कर सकते। हमें अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ये भक्ति है। लेकिन वो किस प्रकार होना चाहिए, 24 आवर्स, 24 घंटे। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है, अभी जो हम साधना कर रहे हैं इस साधना का अभ्यास ऐसा करना है कि ये निरंतर बढ़ती जाए, ये सेवा निरंतर बढ़ती जाए। अलग अलग प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें कृपा करके इतनी वैरायटी, इतनी विविधता पूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। हम भगवान के संग में अलग अलग प्रकार से आनंद ले सकते हैं। कभी भगवान का नाम जप के रूप में, कभी कीर्तन के रूप में, कभी भगवान के शिव विग्रह के दर्शन के रूप में, उनकी सेवा के रूप में, मंदिर की सफाई के रूप में, भक्तों को प्रसाद बांटने के रूप में, प्रचार कार्यों में सहयोग देने के रूप में, अलग अलग प्रकार से हम अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं और हम भगवान की कृपा आकर्षित कर सकते हैं। तो एक्चुअल वास्तव में ये भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। जैसे अगर कोई भक्त किसी दिन ऐसा सोचता है, अरे मुझे ये सेवा करनी है और जब तक मेरी ये सेवा समाप्त नहीं होगी तब तक मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करूँगा, तो वो ऐसा कुछ हट कर लेता है और वो सेवा में लगा रहता है। लेकिन भगवान ये देख के भक्ति उस भक्त की सेवा भावना देख के भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान किसी को भेज देंगे उस भक्त के लिए प्रसाद पहुंचा देंगे, नहीं 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 आप अभी प्रसाद लीजिए, सेवा कीजिए लेकिन पहले प्रसाद लीजिए। तो ये भगवान का स्नेह है। जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी जब यहाँ वृंदावन से भगवान गोपाल उन्हें आदेश देते हैं कि आप जाइए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी जाकर वहाँ से चंदन लेके आइए क्योंकि मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है, तो भगवान की इस आज्ञा का पालन माधवेंद्रपुरी बड़े उत्साह से करते हैं। हालांकि उनका शरीर बहुत वृद्ध हो चुका था लेकिन फिर भी वो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं और जाते हैं जगन्नाथपुरी तक। और मार्ग में जब वो गोपीनाथ रेमुना पहुँचते हैं उड़ीसा में, तो वहाँ पे भगवान की दिव्य लीला उनके साथ होती है, आप सब जानते हैं। भगवान स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी करते हैं और जब जगन्नाथपुरी माधवेंद्रपुरी पहुँचते हैं और वहाँ से चंदन लेके वापस आ रहे होते हैं, तो वास्तव में वापस आने का मार्ग बहुत कठिन था उस समय। बहुत दूसरे जो मुगल शासक थे उनका बहुत प्रभाव था और मार्ग में बहुत चोर डाकू भी थे जिससे उन्हें बहुत खतरा हो सकता था। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी वापस आते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी अपने निश्चय में दृढ़ थे भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। तो ये भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितना भगवान के प्रति समर्पण कर सकते हैं। भगवान की सेवा में कभी कभी हमें कुछ रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन हम कैसे रिस्क ले सकते हैं, अगर हमें श्रद्धा है, विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे तभी हम रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के जीवन में ऐसे अनुभव हैं भगवान की सेवा के कार्य में, प्रचार कार्य में, जब भक्त बहुत कठिनाई की परिस्थिति में फंस गए लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा के लिए कुछ कष्ट लेते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं, तो भक्तों का भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास और दृढ़ हो जाता है। तो ये विज्ञान है, इस विज्ञान को हमें करने से, अपने जीवन में उसका आचरण करने से ही पता चलेगा। एक चीज़ है खाली थ्योरिटिकल पढ़ना और सुनना, लेकिन दूसरा है उसको अपने जीवन में उतारना, तो उससे हमें अनुभूति प्राप्त होती है। तो जब माधवेंद्रपुरी वापस आ रहे थे, तो जैसे ही वो फिर से रेमुना पहुँचते हैं खीरचोर गोपीनाथ के पास, तो उस रात भगवान गोपाल, वृंदावन के गोपाल, उनके स्वप्न में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप ये चंदन यहाँ जो गोपीनाथ विग्रह हैं उन्हें ही लगा दीजिए और उन्हें लगाने से मैं यहाँ वृंदावन में ठंडक का अनुभव करूँगा, आपको इतना कष्ट उठा के वृंदावन तक चंदन लाने की आवश्यकता नहीं। तो इससे पता चलता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के प्रति भगवान हमेशा संवेदनशील है, हमेशा सेंसिटिव है भगवान अपने भक्तों के प्रति। तो ये हमें जानना चाहिए। तो ये भगवान के साथ जो ये प्रेम का आदान प्रदान है, इसका जो आनंद है, ये भक्तों को और सेवा में आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है। तो हमें इस भक्ति को इस प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बता रहे हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात। भक्ति में हम प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वह है उत्साह। हमें भक्ति के लिए उत्साहित रहना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए किस प्रकार हम अपने गुरु के आदेश का पालन कर सकें। तो इस उत्साह को देख के भगवान हमें और शक्ति प्रदान करते हैं सेवा की और बुद्धि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ये ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था में भक्त भगवान के भगवान का अनुभव करते हैं और ना ही वो शोक करते हैं और ना ही वृथा हर्षित होते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। कि जो ब्रह्मभूत अवस्था है ये वास्तव में मुक्त अवस्था है। अभी हम तीन गुणों में बंधे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। इन तीन गुणों से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन तीन गुणों को पार कर जाते हैं तो वो अवस्था वास्तव में ब्रह्मभूत अवस्था कहलाई जाती है, मुक्त अवस्था कहलाई जाती है, यानी आत्मा के स्तर की अनुभूति। तो वो इतना सरल नहीं है प्राप्त करना, अभी हम साधना की अवस्था में। तो हमें जब हम उत्साह भाव से और विनम्र भाव से भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, भगवान को और श्री गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में सब कार्य करते हैं, तो उनकी कृपा से हम इन गुणों को पार कर सकते हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है इसको कौन प्राप्त कर सकता है, तीन गुणों से परे कौन जा सकता है? जो भगवान की अव्यभिचारी भक्ति कर रहा है, मतलब एक निष्ठ भाव से जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तभी हम इन गुणों को पार कर सकते हैं। अन्यथा इन तीन गुणों को पार करना इतना आसान नहीं है। अभी हम तीन गुणों के प्रभाव में कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी सेवा भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ हम प्रचेताओं का चरित्र सुन श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया कि प्रचेता किस प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर पाए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर पाए। तो बताया गया कि तपस्या से और प्रार्थना से। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान शिव द्वारा बताई गई प्रार्थनाओं को गाया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम हैं जी शिव जी जो प्रार्थना सिखाए उन्हें वो प्रार्थनाएं वो गाएं। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान से कुछ प्रार्थना कर सकते हैं अपने मनोभाव से, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा गाई गई प्रार्थनाओं को गाते हैं, भगवान के सामने उस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, तो उससे हमें भगवान की कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो सकती है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। तो ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से विनम्र भाव में प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुय प्रपतन प्रसंगा कृत्वात्मसात सुरेषिणा भगवान गृहीतो सोहम कथम विसृजे तव भृत्य सेवा। तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। तो बोल रहे हैं कि एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, इस भौतिक संसार रूपी अंधे कुएं में मैं बुरी तरह से गिरा पड़ा था, कामाभिकाम मनुय प्रपतन प्रसंगात, और संसार के जो विषय भोग की भावनाएं हैं उनके प्रभाव से मैं बहा जा रहा था इस संसार रूपी समुद्र में। कृत्वात्मसात सुर ऋषिणा भगवान गृहीतो, हे भगवान हे कृष्ण, आपके प्रिय भक्त नारद मुनि ने मुझे ग्रहण किया, इस भौतिक संसार रूपी अंधे कुएं से उन्होंने मेरा उद्धार किया, मुझे बाहर निकाला। सोहम कथम विसृजे तव भृत्य सेवाम, इसलिए क्योंकि नारद मुनि ने मेरे गुरु ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे इस भौतिक संसार के अंधकार से बाहर निकाला, और आपका दिव्य ज्ञान प्रदान किया, आपकी भक्ति आपकी सेवा में मुझे संलग्न किया, तो इसलिए सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा, इसलिए आपके उस प्रिय भक्त की सेवा मैं किस प्रकार त्याग सकता हूँ, मैं नहीं त्याग सकता। तो हमें भगवान के प्रति और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमें भगवान की सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप योग्यता भी अर्जित करनी चाहिए। तो यहाँ इस संवाद में बताया गया कि किस प्रकार प्रचेता भगवान की कृपा प्राप्त कर सके, भगवान के दर्शन प्राप्त कर सके। तो बताया गया तपस्या और प्रार्थना, तो ये तपस्या भी बहुत आवश्यक है। ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं, तपस्या का अर्थ है शुद्धता। जैसे प्रभुपाद जी कुछ हमें सूत्र दिए हैं, प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शुद्धता ही शक्ति है। अगर हम प्रचार करना चाहते हैं, ये हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, अभियान है, ये प्रचार का अभियान है। अर्थात जितने भी असंख्य जीव हैं उन सबको भगवान कृष्ण के बारे में बताना, उन सबको हरिनाम के आश्रय तक लाना, उन सबको वैष्णव की शरण में लाना, ये प्रचार अभियान है हमारा। लेकिन ये प्रचार हम कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर शुद्धता की शक्ति होगी, जब हमारे अंदर शक्ति होगी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, जिसके पास प्राण है वही प्रचार कर सकता है। लेकिन ये प्राण शक्ति कहाँ से आएगी? ये प्राण शक्ति आएगी शुद्धता से। और शुद्धता कैसे आएगी? तो शुद्धता आएगी तपस्या से। अगर हम कुछ तपस्या करेंगे तभी हम शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी तपस्या अलग है। हमारी तपस्या क्या है? कलयुग में हम कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं। हम पर इतने दयावान हैं कि भगवान हमें दे रहे हैं केवल हरि नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। केवल हरि नाम के जप और कीर्तन से ही हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा। इतनी कृपा आप कर रहे हैं भगवान, भगवान ममापि दुर्दैवमिदृशम इहा जनिनानुराग। हे भगवान, हे कृष्ण, आप इतनी दया कर रहे हैं कि केवल अपने नाम हरि नाम में ही आपने अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी है, और कोई काल कोई समय का कोई उसमें विधान नहीं रखा। किसी भी समय हम हरि नाम ले सकते हैं। लेकिन मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि दुर्दैवम इदृशम इहा जनिनानुराग, हरि नाम में भी हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। तो ये हरि नाम जो है हम अपने प्रयास से नहीं ले सकते हैं। इसीलिए बताया येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। हरि नाम में रस का आस्वादन, जैसा यहाँ पे रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी हजारों जीवाएं और हजारों कान हो तो मैं हरि नाम का आस्वादन कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास एक दो कान और एक जीवा है, लेकिन हम 16 माला जप करने के बाद थक जाते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हरि नाम ऐसा है, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप ऐसा है कि निरंतर दिन रात करने से भी कोई थकावट नहीं होती। ये प्रभुपाद जी की अपनी अनुभूति है। लेकिन हमारी अवस्था क्या है? दुर्दैवम इदृशम, हमारी बड़ी दुर्भाग्य की अवस्था है कि हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करनी होगी, वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी होगी। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। इन जड़ इंद्रियों, अभी हमारी इंद्रियां जड़ है, अभी हम देहात्म बुद्धि में ये शरीर को हम मैं मान के बैठे हैं, सुनते हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन जब व्यवहारिक स्थिति आती है तो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये अभी प्रारंभिक अवस्था है हमारी, लेकिन हमें प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। तो उसका उपाय क्या है? सेवन मुख होना चाहिए हमें। एक है भोगोन्मुख, एक है सेवन्मुख, एक है भौतिक स्तर, एक है आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर भौतिक स्तर में क्या अंतर है? भौतिक स्तर का अर्थ है जब हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने की इच्छा रखते हैं और सब प्रयास करते हैं उस दिशा में, तो ये भौतिक धरातल है। और आध्यात्मिक स्तर क्या है? जब हम केवल और केवल भगवान कृष्ण और भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए सब प्रयास करते हैं। ये भौतिक या आध्यात्मिक स्तर है। लेकिन अभी वर्तमान अवस्था में ये इंद्रियों का और मन का प्रभाव इतना प्रबल है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, अपने आप को इसमें स्थिर नहीं रख पाते हैं। जैसे हम शिव विग्रह के सामने खड़े होते हैं, हम जानते हैं कि साक्षात भगवान में और भगवान के शिव विग्रह में और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। लेकिन जब हम विग्रह के सामने यदि खड़े होते हैं और अगर मन में कुछ दूसरा चिंतन हो रहा है, तो क्या हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे? क्या भगवान की कृपा का हम भगवान की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे? उतना ही उसमें व्यवधान, बाधा आ जाती है, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां भोगोन्मुखी स्थिति में है, लेकिन हमें उसे सेवोन्मुखी अवस्था में लाना पड़ेगा। तो निरंतर भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की कथा का, भगवान के कीर्तन का श्रवण करते हुए प्रभुपाद जी और उनके शुद्ध प्रतिनिधियों के अनुगत्य में कुछ सेवा करते हुए और उस सेवा को निरंतर बढ़ाते हुए जब हम अपने जीवन को इस प्रकार ढालेंगे, तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे और भगवान की कृपा का अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। ये अनुभव की वस्तु है। तो यहाँ एक जगह प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि नच इदम अतपस्काय, जो तपस्या नहीं करते हैं, न अभक्ताय, जो भक्त नहीं है, न च अशुश्रवे, और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को भगवान के विषय में नहीं बताना चाहिए। इसीलिए 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। तो ये नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो इस प्रकार के अश्रद्धालुओं को भी भगवान की ओर लाने का प्रयास करते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, जो जगाई मधाई जैसे पतितों के पास जाते हैं और उन्हें हरिनाम का संदेश देते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके सभी जीवों को हरिनाम बांट रहे हैं, आज भी बांट रहे हैं। हम देख सकते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं, सब जगह हरिनाम फैल रहा है। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मौना, ये हो रहा है वास्तव में प्रभुपाद जी की कृपा से और प्रभुपाद जी के प्रतिनिधियों की कृपा से। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दूसरे विश्वास के लोग रहते हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उन लोगों को भी भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की कृपा बांट रहे हैं। जगह जगह ऐसे ऐसे देशों में भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, और जो लोग सनातन धर्म को जानते ही नहीं हैं, जो भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, वो लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का हरिनाम संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं और भगवान का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथ प्राप्त कर रहे हैं। तो इतनी कृपा भगवान के शुद्ध भक्त बद्ध जीवों को पहुंचा रहे हैं, कष्ट करके अपने सुख को, अपने आराम को त्याग के भगवान के भक्त भगवान की प्रेममय सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जो देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी सेवा भगवान के प्रति बढ़ाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। ये हमें प्रयास करना चाहिए। और भक्तों को हमेशा एक दूसरे को केवल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को भगवान की याद दिलानी चाहिए। माया हमें भगवान को भुलाने का प्रयास करती है, लेकिन भक्तों का प्रयास रहना चाहिए एक दूसरे को भगवान और गुरु वैष्णव की आज्ञाओं को, उपदेशों को याद दिलाने का। ये वास्तव में भक्त संघ, साधु संघ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ वक्तव्य है तो बोल सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।